गुरुदेव का एक वचन है जो कि जीवन गाथा भाग दो में आप पढ़ सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी जीवन की एक दशा या स्थिति का नाम ईश्वर। प्रेमी जी जीवन की एक दशा या स्थिति का नाम ईश्वर है। पूर्ण गुरु जिज्ञासु को अधिकारी जानकर अंदर का रास्ता बतलाता है, जिस पर चलकर मनुष्य उस मुकाम पर पहुंचता है जहां सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण भूख प्यास मान अपमान आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, जहां बुद्धि टिक ही नहीं जाती बल्कि लय अर्थात समता को प्राप्त हो जाती है। इसको सुनिए, पर सुने, प्रेमी जी जीवन की एक दशा या स्थिति का नाम ईश्वर है। पूर्ण गुरु जिज्ञासु को अधिकारी जानकर अंदर का रास्ता बतलाता है, जिस पर चलकर मनुष्य उस मुकाम पर पहुंचता है जहां सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण भूख प्यास मान अपमान आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, जहां बुद्धि टिक ही नहीं जाती बल्कि लय अर्थात समता को प्राप्त हो जाता है। अब विचार करने की बात यह है, कोई भी संसार का मनुष्य अपने पूरे जीवन भर क्या प्रयास करता है? सुख दुख एक द्वंद्व है जो हमेशा एक साथ रहते हैं। इसमें से वो सिलेक्ट करता है सुख को, दुख को दूर भगाने की कोशिश करता है। मान अपमान ये भी दोनों साथ है, जिसका मान होता है उसका अपमान भी कोई ना कोई कर ही देता है। तो इन दोनों से वो एक छांटता है कि मान मिलता रहे। भूख प्यास इसके कारण भी हम बेचैन होते हैं। जन्म मरण फिर से भी एक ही छांटते हैं कि मृत्यु का दर्शन मुझको ना करना पड़े, हमेशा जीता रहा। अब ये द्वंद्व है, प्रकृति का जो निजाम है या प्रकृति का जो सिद्धांत है वो द्वंद्व रूप है, या हर वस्तु द्वंद्व रूप है। जब द्वंद्व के साथ आपको मिलेगी तो एक आप उसमें से चाहते हो, इसीलिए आप कभी किसी कारण से परेशान होते हो, कभी किसी कारण से परेशान होते हो। आपकी परेशानी के कारण लगातार बदलते रहते हैं, परंतु बेचैन आप हमेशा ही रहते हैं। इसलिए वाणी निर्णय कर रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगल नाम गोविंद का हरे सकल तक से। मेरी सारी बेचैनी केवल गुरु गोविंद का नाम हर सकता है, जिस मार्ग पर गुरु हमको लगाता है, जो जिज्ञासु है वास्तव में सही खोज करना चाहता है, अपनी परमानेंट बेचैनी का इलाज करना चाहता है, उसका रास्ता से गुरु उसको अंदर दिखलाता है। इसीलिए वो दीक्षा देके आपको अंदर सिमरन करने के लिए कहता है, अंदर ध्यान करने के लिए कहता है, अंदर खोज करने के लिए कहता है, इसको आत्मचित खोज। लेकिन मेरा सारा प्रयास बाहर होता है, देह के द्वारा इंद्रियों के मन के अंदर उसके संकल्प उठते हैं, बुद्धि के द्वारा उनका निर्णय होता है। तो निर्णय करने वाला भी मैं हूं, मन भी मेरा ही है, इसलिए संकल्प भी मेरे मन में ही उदयते हैं, क्योंकि वो सारे निर्णय सारे संकल्प बाहर के लिए हैं। इसीलिए बुद्धि बाहर के बारे में ही सोचती है, इसमें सबसे पहला नंबर इस देह का आता है, यह बाहरी चीज है। बुद्धि देह के अंदर है, अर्थात मैं देह के अंदर हूं, लेकिन देह मेरा इक्विपमेंट है जो इस संसार रूपी क्षेत्र में क्रिया करता है। और मैं गफलत में रहता हूँ, मेरे जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। वो दिन आज तक पूरी दुनिया में किसी भी संसारी मनुष्य के अंदर वो दिन आया ही नहीं उसके जीवन में। जब से सृष्टि बनी है आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई मनुष्य संसारी हो, संसारी तरीके से जीवन व्यतीत करता हो और उसके जीवन में चैन का दिन आ गया, वो हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे मैं किसी भी मेथड से ये दिन अच्छा लगता है तो रात तो खत्म कर लो, दिन ही दिन है ऐसा प्रयास करो, तो आप क्या कहोगे ये तो मूर्ख आदमी है, इसका ये प्रयास तो कभी सफल होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है जहां दिन है वहां रात भी जरूर होगी, सूर्योदय जहां होता है सूर्यास्त भी वहां जरूर होगा। तो पूरी प्रकृति पूरा संसार द्वंद्व रूप है, परंतु क्योंकि मैं संसारियों के बीच में रहता हूं, संसारी लोग हमेशा दो में से एक चीज सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझको भी कहते हैं, मेरे माता पिता भी ये सिखाते हैं कि तू ऐसा कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, बड़ा चैन से जीवन जिएगा। लेकिन जब बुद्धि में विवेक आता है अर्थात सत्प्रसिद्धि बात पर विश्वास आता है, उनके जीवन पर विश्वास आता है कि जो जीवन उन्होंने जिया वो प्रमाणित करता है इस बात के लिए जो बात वो कह रहे हैं या शास्त्र में लिख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, उन्होंने वो जीवन जीकर उसको सिद्ध किया। इसीलिए पूर्ण गुरु पर जब तक मेरा विश्वास नहीं आता मेरा अध्यात्म का रास्ता ठीक नहीं होगा। चलने की कोशिश भी करता हूँ, सारी दुनिया ईश्वर को मानती है, किसी प्रकार से उसकी पूजा भी करती है, लेकिन आप देखते होंगे बेचैन सब रहते, संतुष्ट कोई नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेसिक गलती मेरी यही है कि मैं अपने आप को कुछ का कुछ समझता हूं। जैसे कि उदाहरण आता है कि सीप होती है समुद्र में, सीप का जो ऊपर की परत होती है वो तो चांदी जैसी चमकती है, लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या कहेगा कि ये चांदी की सीप है, चमक उसमें चांदी वाली, लेकिन जो ज्ञानी है उस सीप का वो कहेगा ये चांदी नहीं है इसकी चमक चांदी है। तो संसार में सुख होता नहीं है, सुख का मतलब ही एक होता है, याद रखिए सुख का मतलब होता है मन का सेटिस्फेक्शन, संतोष, जिसको हम तृप्ति भी कहते हैं, मेरा मन तृप्त हो जाए उसको सुख कहते हैं। वो संसार में है ही नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकती। ये जो वाणी है क्यों कहेगी कि राजा दुखिया, गाणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। संसार में यदि कोई भी संतुष्ट हुआ जिसने अपने अंतर्गत उस प्रभु की शोभा को जाना, वो शोभा क्या है, ये वाणी कह रही है कि जड़ देही को करे सरजीत सो ही तेरा रूप कोई, तेरा जो पवित्र रूप है उसको नहीं पता वही तेरी इस देह को जीवित रखे हुए, वही इस तेरी देह को एक्टिव रखे हुए। लेकिन मैं मेरी स्थूल बुद्धि है, बारीक बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं बारीक चीज को कभी पकड़ नहीं पाता, स्थूल देह को मुझको नजर आ रही है, यह भी पता है इसको मैं नहीं चला रहा, इसको कोई चला रहा ये पता है, लेकिन वो कौन चला रहा है इसका उसको कुछ पता नहीं। वाणी कही कि तू ही इस देह को चला रहा, इसलिए करना चाह रहा तुमने अपने रूप की करो संभाल दुर्मत काट दही का जा, तुम्हें अपने रूप की संभाल करनी थी अर्थात उसकी खोज करनी थी कि मैं कौन हूं, और दुर्मत काट दही का जा, मैं देह हूं ये तेरी दुर्मति है, तेरी मोहग्रस्त बुद्धि है, ये जंजाल है तेरे लिए और तू इस जंजाल को कोशिश करके गहरा कर रहा है, संसार की नकल कर रहा है। मानव जन्म का इतना कीमती समय तो कहां खो रहा है। ऐसे ऐसे कोई स्टेप ले लेता है, ऐसे ऐसी प्रगति कर लेता है जो तुझको पहले से भी ज्यादा बेचैन रखती है 24 घंटे। ये तेरी प्रगति का प्रगति की स्थिति उसको पता ही नहीं। मनुष्य की बुद्धि बड़ी बारीक सोच सकती है, इतनी बारीक सोच सकती है कि अभी आप देखते होंगे कि पिछले हफ्ते ही एक नोबेल प्राइज का डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, जिसमें जर्मनी के साइंटिस्ट भी शामिल। अब बताइए क्या खोज की उन्होंने। हम सब जानते हैं जिन्होंने भी थोड़ा विज्ञान पढ़ा है, एटम किसी भी वस्तु का छोटे से छोटा कण माने लोहे का टुकड़ा ही, उसका यदि एक कण ले लो तो हम कहते हैं उसको मॉलिक्यूल है, अणु है। उसका उसको भी छोटे टुकड़े कर दो तो वो परमाणु, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो अणु के रूप में ही रहता। अब परमाणु इतनी छोटी चीज है कि ना आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो जो आपके पास होते हैं, ना आप अपनी आंख से देख सकते हो उस परमाणु को, इतना छोटा है। उस कण के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति इतनी तेज होती है कि आप किसी भी इक्विपमेंट से उसकी गति का पता नहीं लगा सकते। अब इन वैज्ञानिकों ने क्या खोज की कि उस इलेक्ट्रॉन की क्या एक्टिविटी परमाणु के अंदर होती है, क्या करते हैं वो। भाई जब तक उसका आप फोटो भेज नहीं पाओगे, जानोगे नहीं, कैसे पता लगाओगे। तो उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन की फोटो भी खींचने के लिए सिद्धांत की खोज कर दी, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। अब बताइए ये खोज साइंटिफिक लेवल पर, संसार के लेवल पर आगे जब इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, तो कितने आपके नए नए काम हो जाएंगे, कितने नए नए इलाज के तरीके निकल आएंगे। हम बताइए कि मेरी ही बुद्धि एक परमाणु जो आंख से देख नहीं सकते उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फोटो खींचने की भी टेक्निक इजाद कर सकता है, मेरी बुद्धि खोज कर सकती है, तो क्या मैं अंदर ईश्वर की खोज नहीं कर सकता। तो आइंस्टीन ने भी ये किया। आइंस्टीन ने एक एटम को ब्रेक करने पर, तोड़ने पर कितनी एनर्जी निकलती है उसकी खोज कर ली, एनर्जी इक्वेशन की खोज कर ली, उसके आधार पर एटम बम बन गया। तो खोज करके उस सिद्धांत का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग भी हुआ, लेकिन तो उसी सिद्धांत का अमेरिका ने क्या दुरुपयोग किया, एटम बम बना के जापान को फोड़ दिए, हिरोशिमा साकी और सारा बर्बाद। तो जो कला भी मेरे पास आएगी, मनुष्य की फितरत है, एक मनुष्य उसका सदुपयोग करेगा, दूसरा मनुष्य उसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए महत्व कहते थे प्रेमी साइंस की या प्रकृति की ज्यादा खोज नहीं करनी चाहिए। तेरा यदि गुजरान वाला प्रोग्राम है, तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए, उतनी तो खोज ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना फिर तू उसका दुरुपयोग करेगा, तेरे लिए ही तेरी ही खोज मौत का कारण बन जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, जिसको हम जीव कहते हैं, जीव क्यों कहते हैं कि इसके अंदर चेतना भी है और खोज करने की शक्ति भी, कि नई सी नई चीज जान भी सकती है, उसी खोज भी कर सकती है, उसका उपयोग भी कर सकती है। लेकिन क्योंकि द्वंद्व रूप है, प्रकृति में हर चीज द्वंद्व रूप है, इसीलिए जो फायदे तो तलाश करेगा, बुद्धि तेरी सोचेगी ये फायदे मिलेंगे, उसको पता नहीं है, उसे दूसरा व्यक्ति उसी ज्ञान को उपयोग करेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए प्रकृति में विध्वंस हमेशा होता रहेगा, नई चीजें हमेशा बनती रहेंगी, लेकिन मनुष्य को चैन कभी नहीं आएगी। आइंस्टीन से जब पूछा गया कल को यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप यदि अगला जन्म होता है, उसको नहीं पता था कि होता है नहीं, यदि आपका अगला जन्म होता है तो आप क्या बनना चाहोगे? आइंस्टीन क्या कहते हैं, मैं वैज्ञानिक दोबारा कभी भी बनना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत की खोज करने के बाद मुझे यह पता लग गया इस पूरी प्रकृति में ऐसे हजारों सिद्धांत काम कर रहे हैं, उसका कोई एक नियंता है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। सारे सिद्धांत ठीक काम कर रहे हैं, कोई तो नियंत्रण करने वाला होगा उनको। तो मैं यदि मेरा अगला जन्म होता है तो मैं उसको जानना चाहूंगा जिसको सुना है धर्म कहते हैं, जिसको सुना है ईश्वर कहते हैं। बताइए, नोबेल प्राइज विनर विश्व की सबसे महानतम खोज उसने की थी, उसके बाद ही ये खोज आगे की हो रही है, उसके आधार पर वो क्या कह रहा है अपने अनुभव से, मैं जीवन में वैज्ञानिक कभी नहीं बनना चाहूंगा। क्यों? तो वो कहते हैं पूरा जन्म मेरा एक खोज में बीत गया, मुझे क्या मिला? मुझे तो अपने जीवन का होश ही नहीं। उसी को गुरुदेव कह रहे, देवी यदि तुमने गुरु की बात मानी होती, गुरु ने जो कहा था कि अंदर जा, मन को अंदर ले जा, बाहर सादा है, कम से कम जरूरत फैला अपनी, सादगी से काम चलाने की कोशिश कर ताकि बुद्धि को बाहर ज्यादा, मन को बाहर ज्यादा ना ले जाना पड़े, और असली चीज तेरे अंदर है, शांति का सागर तेरी देह के अंदर मौजूद है, तू खुद भी इस देह के अंदर ही रहता है, याद रख। तो मैं हूं जीव जिसमें जीवन है, जो जानता है, मैं नोइंग फैकल्टी, मैं जानता हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं, मन मेरे बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मन की सारी ट्रेनिंग बाहर की हुई है, वो तो संसार के बारे में जानता है, इंद्रिय भोग के बारे में जानता है, बाहर देह के बारे में जानता है, लेकिन अंदर के बारे में कुछ नहीं जानता। तो सब कुछ कहते हैं कि तुझको जो मंत्र दिया, तुझको जो दीक्षा दी, तुझको जो नाम दिया, तू मन में उसकी याद करने की कोशिश की, और बुद्धि का जो विवेक है उसको जागृत करने की कोशिश की, ईश्वर क्या है, देह क्या है, इंद्रियां क्या है, प्रकृति और देह क्या है, इनका क्या संबंध है, अस्तित्व क्या होते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, जो मेरा ज्ञान है, जो अध्यात्म विद्या उसको सिखाती है, उस तरीके से मैंने अपना संसार का विज्ञान सीखा। तब तुझको पता लगता है कि तेरी देह के अंदर एक ऐसी वस्तु मौजूद है, ऐसी चीज मौजूद है, ऐसी जीवन शक्ति, ऐसी चेतना मौजूद है, जिसका अनुभव करके तू फिर अंदर का हो जाता है, बाहर का नहीं। महाराज जी बाहर क्या करते हैं? एक बार उन्होंने दूध पी लिया या चाय पी ली, खत्म हो गया, कपड़े तन पर है, 18 दिन बाद या जितने दिन बाद बदलते थे, एक ही बार बदलते थे, तो शरीर का क्या प्रभाव था? सारा प्रभाव बंद। उनको शांति मिली, इतनी शांति मिली कि भारत का पार्टीशन हो गया, उनका घर उजड़ गया, उनका आश्रम उजड़ गया, उनकी संगत उजड़ गई जिसको बसाया था, तो उनके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बल्कि उल्टा उनके शिष्य जो बचकर आए थे उनके अंदर मानसिक क्लेश है, उनके अंदर बेचैनी है। गुरु उनको समझा रहे, सब्र रखो, गुरु सब्र रखने की बात है, कि गुरु जानता है जो प्रारब्ध है उस दृश्य से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता, इसीलिए सब्र रखो। सब्र कब आता है? जब मैं उस सिद्धांत को जानता हूं जिसको प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ देह का होता है, ये देह जिन परिस्थिति से इसने गुजरना है उससे गुजरेगी, और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है मन और बुद्धि जो अंग अंदर है। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी तू अपने संस्कार आप बदल भी सकते हैं, तू अपना स्वभाव आप बदल भी सकते हैं, तमोगुणी स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, सतोगुणी स्वभाव लेकर इस संसार से विदा हो सकता है। अब बताइए, यदि सतोगुणी संस्कार मैंने गुरु के अनुसार चला तो बन जाएगा मेरा, और उसको लेकर जब मैं शरीर को त्याग करूंगा, मैं नई देह और चारों का तरफ का जो वातावरण मिलेगा वो कैसा होगा? इसीलिए वो वातावरण प्रभु हमको देते हैं प्रारब्ध के रूप में। बाहर हमको गुरु भी मिलेगा, इंद्र ईश्वर की उपासना की प्रेरणा भी मिलेगी, उस पर मैं आगे बढ़ भी पाऊंगा, मुझको गाइडेंस भी मिलेगी, वो सारी चीज आपको अगले जन्म में रेडीमेड मिलेगी। इसके बारे में कृष्ण जो है गारंटी दे रहे अर्जुन विचार। अब बताइए, जब मुझको अंदर अपनी देह के अंदर उस ईश्वर का बोध होता है, फिर मैं धीरे धीरे उस ईश्वर के साथ एक हो जाता हूं। फिर जो अभी ईश्वर का काम है मेरे अंदर, वो कार्य करने की पूरी सामर्थ्य आ जाती है, जिसको हम सिद्धि कहते हैं। कैपेसिटी मेरे अंदर, लेकिन सिद्धि का उपयोग कोई कोई सब कुछ करता है। इसलिए महर्षि रमा कह रहे हैं कि जो लोग सिद्धियों का उपयोग करते हैं, और आप मुझसे आशा करते हो कि मैं भी उसी तरह सिद्धि का उपयोग करूंगा आगे काम बनाने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सत्पुरुष की देह का भी प्रारब्ध होता है, यदि उसका प्रारब्ध उस प्रकार का है तो वो सिद्धियों का उपयोग करेगा, वो क्रियाएं उसके द्वारा होंगी, लेकिन वो प्रारब्ध क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित है। इसीलिए जो इच्छा रहित हो, कौन सी इच्छा पूरी करोगे? कोई नहीं करोगे, सिद्धि का क्या करोगे? एक बार किसी ने कहा उनसे, महर्षि रमा से, महर्षि जो ईसा मसीह थे उनको जो चोगा पहनते थे, जो अंधा आया आपके पास चोगा पकड़ के उसने कहा प्रभु मेरी आंखें दे दो, उसको आंखें मिल जाती, नगना आया प्रभु मुझे टांग ठीक कर दो, उसकी टांग ठीक हो जाती, तो महर्षि रमा क्या कहते? क्या उनको पता होता था? क्या ईसा मसीह को पता होता था कि मेरा चोगा पकड़ के कोई मांग रहा है? वो तो चलता फिरता ईश्वर है, जो वहां तक आ गया उसका प्रारब्ध आ गया आग थी बने, उसका प्रारब्ध आ गया टांग थी बने। ईसा मसीह कुछ नहीं करते, इस राज को सतपुरुष ही बता सकते, हमारा क्या जाने। हम तो ये कहेंगे महाजी के पास जाके कुछ मांग लेंगे दे देंगे, यहां प्रकृति में कुछ भी नया नहीं होगा, जो होना सो हो रहा, रब की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। इस एक वाणी पर, इस एक दोहे पर आपके आपका विश्वास आने में हो सकता का पूरा जन्म लग गया, तब भी आप आपका विश्वास इस दोहे पर ना है। लेकिन महर्षि रमा यही बात कह रहे हैं, इसीलिए सतपुरुषों की बात यदि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वह में जीते हैं महा जी कृपा कर देंगे, मेरे ऊपर स्पेशल कृपा कर देंगे, महाजी पार्शलिटी करेंगे, तेरे प्रारब्ध के विरुद्ध जाके अपने सिद्धांत को बदल देंगे, प्रकृति के सिद्धांत को बदल देंगे और तेरा काम कर देंगे। तो इसलिए मैं अपनी शक्ति को अंदर लगाने की बजाय फिर वही संसार में लगाई था, गुरु का उपयोग भी संसारी वासना को पूर्ति के लिए करने लगता हूँ, ये मेरी अंधबुद्धि नहीं तो क्या? यदि महाराज जी के द्वारा भी तेरा कोई काम सिद्ध हो जाता है और तुझको लगता है महाराज ने सिद्ध कर दिया, तो याद रख वो तेरे प्रारब्ध के अंतर्गत ही था, अब उसका वक्त आ गया था, इसलिए बहाना महाराज जी बन गए, बहाना कोई और बन गया, लेकिन वास्तविकता ये है तेरे लिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं किया गया। इसीलिए गुरु जब कृपा करता है तो क्या कृपा होता है? वो आपके अंदर जाने में अंदर से ही मदद करता है, ये होती है गुरु, ना कि वो जो हम समझते हैं, वो हमारी अज्ञानी बुद्धि का लक्षण है, अविवेक बुद्धि का लक्षण है। इसीलिए सतपुरुष की बात को ठीक समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए वाणी कह रही है, शब्द सुरत एका भई, शब्द सुरत एका भई, सचखंड कीना आवास, मंगत दुबुधा सब मिटी, काल करम की। काल कर्म क्या होता है? इसको अंग्रेजी में टाइम और स्पेस कहते हैं। ये देह क्या है? ये कहां खड़ी हुई है? ये खुद जगह घेर रही है, और इस आकाश रूपी जगह में, या इसको स्पेस कहते हैं, ये उत्पन्न। तो देह भी आकाश ही है। कर्म किससे होता है? देह से होता है। कर्म कहां होता है? प्रकृति के अंदर होता है, संसार के अंदर होता है। तो संसार भी स्पेस है, देह भी स्पेस है, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसलिए कहा गया काल कर्म की प्यास। तो कर्म की प्यास कब मिटेगी? जब अंदर आपको इस बात का बोध हो जाएगा, ना देह ये ठोस है ना संसार ठोस है, इसका जो मूल रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। तो वो ईश्वर की खोज जब अंदर करता है तो अंदर बाहर सब एक हो जाता है, यदि ये माया गायब है। तो ना वहां काल है, जब ये माया ठोस है ही नहीं तो काल क्या करेगा, समय क्या करेगा, समय की कोई काम ही नहीं इसके अंदर। तो तेरी वो स्थिति जो कह रहे हैं कि शब्द सुरत एकाग्र, अभी मेरी जो बुद्धि है उसको सुरत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं नाम का अंदर जाप करता हूं, मंत्र का अंदर जाप करता हूं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको मौन होने के लिए तो गुरु कहता नहीं, कहता मौन होकर जाओ, उसके अलावा कुछ मत सोचो। सोचना है तो केवल मंत्र की याद जो है बस वही सोचना। तो मंत्र की याद करते करते मेरी सुरत इतनी एकाग्र हो जाती है कि मंत्र चलता रहता है, सुरत उसमें लगी रहती है। सोचना बंद, ना मंत्र के बारे में सोच रहे, ना मन के और संसार के बारे में सोच रहे, सोचना ही सोचने की क्रिया ही वहां बंद हो गई। तो क्या हो गया, इस पर मंत्र में आपकी ध्यान स्थिति। लेकिन ये बाद में और क्या होता है कि अंदर स्थितियां बदलती रहती हैं, आपकी अंदर नए अनुभव आप अंदर होते रहते हैं, उसमें एकाग्रता और गहरी हो जाती है। इतनी गहरी हो जाती है ये बुद्धि यानी सुरत और जो ईश्वर है अंदर, जिसको नाद कहते हैं, जिसको कुंडलनी कहते हैं, वो और ये दोनों मिलकर एक, वो ब्रह्म स्थिति है। सारा संसार खत्म, वहां केवल शांति है, केवल आनंद है, ना वहां मन है, ना वहां संसार है, ना कोई चिंतन है, ना कोई चिंता है। तो उसको वाणी कह रही है कि शब्द सुरत एका भई सचखंड की नावास मंगत दुविधा सब मिटी काम करम की। ओ सुरत।